नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वाहन विनिर्माता बजाज ऑटो ने सोमवार को कहा कि सितंबर के महीने में उसकी कुल बिक्री एक साल पहले की तुलना में 2% गिरकर 3,94,747 इकाइयों की रही। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि सितंबर 2021 में उसने कुल 4,02,021 वाहनों की बिक्री की थी। सितंबर 2022 में बजाज ऑटो की कुल दो पहिया वाहन बिक्री 4% गिरकर 3,48,355 इकाई रही, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 3,61,036 इकाई का था। इसके उलट वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी ने सितंबर में 46,392 वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री की, जो एक साल पहले 40,985 रही थी। हालांकि बजाज ऑटो का वाहन निर्यात 33% गिरकर 1,40,083 इकाई पर आ गया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 2,09,673 वाहनों का निर्यात किया था। नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी सुजलान एनर्जी ने अपने संस्थापक चेयरमैन तुलसी तांती के निधन के बाद सोमवार को कहा कि वो 11 अक्टूबर से खुलने वाले 1200 करोड़ रुपए के अपने राइट्स इशू की पेशकश पर कायम है। कंपनी ने शेयर बाजारों को इसकी सूचना देते हुए कहा कि कंपनी के प्रवर्तकों ने राइट्स इशू में अपनी भागीदारी बनाए रखने की पुष्टि की है। सुजलान एनर्जी ने अपनी सूचना में कहा, प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह ने प्रस्तावित राइट्स इशू में अपनी भागीदारी की फिर से पुष्टि की है और इसे पूरी करने की मंशा जताई है। इसका मतलब है कि कंपनी राइट्स इशू के बारे में 28 सितंबर को जारी पेशकश पत्र में दर्ज समय सीमा का पालन करेगा। LOF में कहा गया था कि कंपनी 240 करोड़ आंशिक रूप से चुकता शेयरों की पेशकश 5 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करेगी। इस तरह इस इशू के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सुजलान के संस्थापक चेयरमैन तांती का शनिवार शाम को हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। वो राइट्स इशू से संबंधित बैठकों में हिस्सा लेने के बाद अहमदाबाद से पुणे लौट रहे थे कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। कंपनी ने इस दुखद घटना के बारे में रविवार को शेयर बाजारों को सूचित कर दिया था। कंपनी ने कहा कि निदेशक मंडल और अनुभवी प्रबंधन टीम सुजलान एनर्जी को आगे ले जाने का सफर जारी रखेगी। घरेलू बाजारों में सुस्ती के रुख और निवेशकों के जोखिम से बचने की प्रवृत्ति हावी रहने से रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 38 पैसे कमजोर होकर 81.78 के स्तर पर फिसल गया। कारोबारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी आने से भी रुपए की स्थिति पर असर पड़ा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 81.65 प्रति डॉलर के भाव पर खुला और जल्द ही 81.78 के स्तर पर गिर गया। इस तरह पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में रुपये में 38 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को रुपया 33 पैसे की मजबूती के साथ 81.40 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के समक्ष डॉलर की मजबूती को आंकने वाला डॉलर सूचकांक 0.04% गिरकर 112.08 के स्तर पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.77% की बढ़त के साथ 87.50 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजारों में BSE और NSE दोनों में ही शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट का रुख रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने फिर से भारतीय बाजारों से निकासी का रुख अपना लिया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने सितंबर के महीने में कुल 7,600 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की है। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों के मानक सूचकांकों में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट का रुख देखा गया। BSE के 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार के दौरान 288.8 अंकों की गिरावट देखी गई। इस तरह सेंसेक्स कारोबारी दिवस की शुरुआत में ही 57,138.12 अंक पर खिसक गया। इस तरह NSE के मानक सूचकांक निफ्टी में भी शुरुआती कारोबार के दौरान 79.4 अंकों की कमजोरी देखी गई और ये 17,014.95 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील और ITC शुरुआती कारोबार में गिरावट में रही। दूसरी तरफ एनटीपीसी, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर बढ़त पर दर्ज किए गए। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई और हांगकांग के सूचकांकों में गिरावट देखी गई, जबकि टोक्यो के बाजार में बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.62% बढ़कर 87.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने फिर से भारतीय बाजार से निकासी शुरू कर दी है। शेयर बाजार से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को 1,565.31 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की थी। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो अब 4G सिम के साथ एक बजट लैपटॉप लॉन्च करने जा रही है, जिसकी कीमत 15,000 रुपए होगी। कंपनी इसे सस्ते 4G स्मार्टफोन जियो फोन की तर्ज पर मार्केट में लाएगी। इस लैपटॉप का नाम जियो बुक हो सकता है, जो सस्ती कीमत के दम पर बड़े पैमाने पर यूजर्स को आकर्षित करेगा। बताया जा रहा है कि 3 महीने के अंदर ये लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि ये लैपटॉप इस महीने से स्कूलों और सरकारी संस्थानों के लिए उपलब्ध होगा। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बजट लैपटॉप को बनाने के लिए रिलायंस जियो ने क्वालकॉम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ साझेदारी की है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।